वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन पॉडकास्ट के साथ बेहजत चलानी। पल पल बदलती दुनिया, कल से आज और तब से अब तक के सफर का अहवाल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला। इस सफर में हमारे हमराह रहिएगा। कल और आज, तब और अब, वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोगों के लिए इस हकीकत को कबूल करना मुश्किल है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द की सूरत हाल इससे बहुत मुख्तलिफ थी जो आज हमारे सामने है। माजी हमारी यादों में जिंदा रहता है, कभी खुशगवार और कभी दिल को बोझल करने वाला। लेकिन दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, या फिर यूं कहिए तब्दील हो रही है, और हमें भी इसके साथ चलना है। खा इसका ताल्लुक माशरे की अखलाकी अकदार से हो, रहन सहन, सियासी और सकाफती मायार, जुग्राफियाई सूरत हाल, सोच अंदाज फिक्र, मेल जोल, सफर, तालीम, हर चीज और हर जगह तब्दीली का यह अमल जारी। आइए आज एक काम करते हैं, एक लम्हे के लिए सोचते हैं और रुकते हैं कि हम इन तब्दीलियों को कैसे महसूस करते हैं और इनसे हमारी जिंदगी कैसे मुतासिर हुई है। इसी पस मंजर में मैंने एक हफ्तावार पॉडकास्ट का प्रोग्राम तरतीब दिया कि हम तब्दीली को कैसे समझते हैं। हर सेगमेंट में हम एक शख्स या जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों से बात करेंगे ताकि वो कल और आज का मुवाजना कर सकें। मुझे यकीन है आपको ये ख्याल पसंद आएगा जब हम बतदरीज होने वाली इन तब्दीलियों का जायजा लेंगे।
जी, मैं समझता हूँ, देखिए, बदल रही है दुनिया और तमाम फलसफी जो एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं हर बात में, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दुनिया को बदलना है। और दुनिया को बदलना है तो आपको अपने आप को बदलना होगा, एडजस्ट करना होगा उसे। या तो आप उस दुनिया को बदल देंगे, वरना ये दुनिया आपको बदल देगी।
और आइए अब आपको मैं बताऊं कि आज हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली इफ्तिखार आरिफ। इफ्तिखार आरिफ के बारे में कुछ कहने का सोचा तो उलझ गई, क्या कहें और कहां से शुरू करें। क्या मैं आपको पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम कसौटी और उन दो शानदार लोगों में से एक की याद दिलाऊं जो अक्सर ऐसी चीजों के बारे में बहुत कुछ जानते थे जो आमतौर पर एक आम आदमी से पोशीदा रहती हैं। या फिर रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस के ड्यूटी रूम में 1989 या 90 में होने वाली मुलाकात से शुरू करूं जो दिहाइयों पर मुहित गहरी और खूबसूरत दोस्ती का आगाज भी रहा। बहुत कम अदबी शख्सियात को इफ्तिखार आरिफ जैसे आला तरीन एजाजात मिले। हिलाल इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, सदारती तमगा, बरह हुस्न कारकर्दगी और बहुत से दीगर एजाजात रखने वाले इस शायर और दानिशवर ने उन तमाम जगहों के अदबी मनाजिर की रहनुमाई की जहां उर्दू बोली और समझी जाती है। आज हम आगाज कर रहे हैं अपने पहले पॉडकास्ट का इफ्तिखार आरिफ से मुलाकात कराते हुए। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का।
बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इस काबिल समझा और मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपके प्रोग्राम में शिरकत करना।
बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। आज अशरों के बाद आपसे एक तफसीली गुफ्तगु का मौका मिला है। आइए एक एक करके बात करते हैं आपसे उन मुख्तलिफ शोबों की जहां आपने काम किया। खबरें हों, मालूमाती टेलीविजन प्रोग्राम हो, बड़े बड़े इदारों की निजामत हो, या इल्मी और अदबी मंजरनामे हों जो आपके तजुर्बे का हिस्सा रहे। और आज हम आपके इसी कल और आज के बारे में बात भी करेंगे। बड़ा सादा सा सवाल है, रेडियो पाकिस्तान से खबरों का आगाज किया, क्या फर्क देखते हैं उस वक्त की खबरों और आज की पेशकश में?
मैं समझता हूँ कि जो खबरों का अंदाज था वो पहले जैसा शायद नहीं रहा। पहले एक खास तरीके से खबरें पढ़ी जाती थी। मसलन रेडियो पाकिस्तान पहले एक इदारा था और अब रेडियो की जगह टेलीविजन के 100 चैनल्स हैं चुनाचे, और दूसरे सोशल मीडिया आ गया है, तो उस तरह खबरें सुनने का जो रवाज था वो शायद शहरों में खास तौर पर, हमारे जमाने में तो कुछ खबरें वक्त के साथ सुबह और शाम और दोपहर, और फिर सलीम गिलानी साहब जब डायरेक्टर जनरल थे तो उन्होंने बीबीसी के तर्ज पर और एक घंटे के बाद खबरों का सिलसिला शुरू किया था। मगर अब मैं नहीं समझता हूं कि रेडियो पर खबरें उस तवज्जो से सुनी जाती हैं, और शायद करीब गरीब बात है कि टेलीविजन पर हालात हाजरा के प्रोग्राम बहुत होते हैं, बल्कि जो पहले जिसको हम प्राइम टाइम कहा करते थे, 7 बजे से 9 बजे तक का वक्त जो है वो ड्रामों के लिए मुख्तस होता था, मगर अब वो जगह ड्रामों से ले ली गई है और अब करंट अफेयर्स के, हालात हाजरा के टॉक शोज होते हैं और जिस भी चैनल पर आप 100 चैनल अगर से ज्यादा चैनल्स हैं, जिस भी चैनल्स पर जाइए वो हालात हाजरा के प्रोग्राम हो रहे होते हैं और जाहिर है कि उनकी बुनियाद न्यूज पर होती है, खबरों पर होती है और खबरनामों पर होती है। और पहले जैसे आप खुद भी खबरें पढ़ती रही हैं, आपको अंदाजा होगा कि उस जमाने में तलफ्फुज पर और जो जुमले की साख्त होती थी उस पर बहुत तवज्जो दी जाती थी और रेडियो पाकिस्तान से जो लफ्ज़ अदा हो जाता था उसी को गया सही समझा जाता था। मगर आजकल हालत उससे मुख्तलिफ है और जो न्यूज़ पढ़ने वाले लोग हैं शायद वो तलफ़ुज पर इस तरह तवज्जो नहीं देते और खबरें बिल्कुल उसी तरह से जैसे अंग्रेजी में लिखी जाती थी और उनका तर्जमा उर्दू में करके नश्र किया जाता था, वही सूरत अभी भी बाकी है।
पाकिस्तान टेलीविजन का प्रोग्राम कसौटी आज भी लोगों की याद का हिस्सा है। क्या हुआ इस नौयत के मालूमाती प्रोग्रामों का, महज अंदाज बदला या फिर जानने की ख्वाहिश बदल गई? आज आपके ख्याल में टेलीविजन में किस हद तक बदलते हालात और सोच के मौजूदा रुझान की अकासी होती है?
जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि जो ज़हनी आजमाइश के प्रोग्राम थे वो टेलीविजन पे उस जमाने में कसरत से होते थे और बैक वक्त कई प्रोग्राम चलते थे। अब अगर मुझे याद है और हाफ़िज़े पे जोर डालूं तो कसौटी और जीना बजीना और शीशे का घर और मीज़ान और साइंस मैगजीन और नीलाम घर, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम थे ये ज़हनी आजमाइश के मुख्तलिफ प्रोग्राम थे। मगर अब वो किस्सा खत्म हो गया। अब मैं देखता हूँ कि किसी चैनल से कोई भी ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम नश्र नहीं होता है। और शायद इसकी वजह ये है कि जो 50 मिनट की स्लॉट्स थी या जो आधे घंटे की स्लॉट्स थी वो सब की सब हालात हाजरा के टॉक शोज ने ले ली है। मसलन क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम था और या फर्ज कीजिए लोक म्यूजिक का प्रोग्राम था, जो प्रोग्रामिंग है उसका कोई तसव्वुर अब नहीं बाकी रहा। मसलन हमारे जो मशहूर प्रोग्रामर्स थे जैसे सलीम गिलानी थे, जैसे खुद ज़ुल्फ़िकार अली बुखारी थे, असलम अज़हर थे, तो जो प्रोग्रामर्स थे वो अब नहीं रहे। तो ज्यादातर करंट अफेयर्स के जो एंकर्स हैं वो अहम हो गए हैं और चाहे वो हामिद मीर हो, जावेद चौधरी हो, काशिफ अब्बासी हो, मेहर अब्बासी हो या अस्मा शिराजी हो, ये सब कामरान हारून रशीद और उदर अयाज़ मीर, ये जो लोग हैं करंट अफेयर्स में शरीक होने वाले लोग, इनकी अहमियत जो है वो बढ़ गई। और जो जैसे आपने कहा, अच्छा बाहर भी मैं देखता हूँ, खुद आपके यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में तो एक न्यूज बेस्ड प्रोग्राम होती थी, प्रोग्रामिंग होती थी, मगर मेरे जमाने में CBS से या NBC से या और STN से प्रोग्राम होते थे ज़हनी आजमाइश के, मगर अब वहाँ भी ये सिलसिला समझिए खत्म।
इफ्तिखार साहब, आप बुलंद पाया शायरी नहीं एक दानिश्वर के तौर पर भी बहुत जाने पहचाने जाते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप तहजीब की एक चलती फिरती मिसाल हैं। 3 अशरों से जायद आपके साथ हमारे जो जाती ताल्लुक और रबते रहे, मैं खुद उसमें गवाह हूं कि कभी कोई एक ऐसा लफ्ज भी मैंने आपसे नहीं सुना जिस पर एक लम्हे को भी मुझे ताज्जुब हुआ, कह रहे ये क्या कह दिया। आपकी इस तहजीब और वजादारी में बदलते वक्त और तब्दील होती हुई इकदार का कोई असर मुरतब हुआ, आपने महसूस किया, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ?
असल में जो जिस तरफ आपका इशारा है वो बहुत अहम बात है। जो तहजीबी सूरत अहवाल है वो बदलती जा रही है और उसको आप, यानी मैं खराब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता मगर ये जरूर कहूंगा कि जो निजाम इकदार था वो बदलता जाता है। लोग फनून लतीफा में दिलचस्पी रखते थे, मौसीकी से और किताब से दिलचस्पी रखते थे, वो मैं देखता हूँ कि वक्त के साथ साथ बदल रहा है। चीज़ों की अहमियत हो गई है और लोग जो हैं को ये बता दिया गया है कि कामयाब आदमी वो है जो मादी तौर पर कामयाब है। चुनाचे نظام اقدار منہدم ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت بڑے اکانومسٹ اور نوبل پرائز ونر تھے گنار میر ڈار, ان کی ایک کتاب ہے اکنامک سسٹمز پر, ایشین راما اس کا نام ہے. تو انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں, جب وہ 70 برس کی عمر سے تجاوز کر گئے, تو ایک بات یہ کہی تھی آج سے کوئی 30 سال پیشتر, دنیا ہم نے لی تھی اپنے بچوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے, ہم اس سے بالکل مختلف دنیا اور اگر میں کہوں کہ خراب معاشرہ دے کر جا رہے ہیں, ایک ایسا معاشرہ جہاں سوائے اقتصاب زر کے اور ذخیرے کے, دولت کے اور چیزوں کے انبار کے, چیزیں منہدم ہوتی جاتی ہیں, پیچھے پسپا ہوتی جاتی ہیں.
جیسے کہ ہم بات ہی کر رہے ہیں, تبدیلی تو زندگی کا ایک ناگزیر پہلو ہے. آپ کے سامنے پاکستان کے کئی اشرے ہیں, پھر ایک بڑی چیز جو اب کچھ عرصے سے سامنے آئی, سوشل میڈیا بڑا ہی فعال اور زندہ قوم کی سوچ اور انداز فکر پر اپنا بڑا گہرا اثر چھوڑتا ہے. پاکستان جیسے معاشرے پر اس کے اثرات بہت واضح طور پر مجھے بھی نظر آتے ہیں. وہ مجھے پاکستان کو چھوڑے ہوئے کوئی 30 سال کا زمانہ ہوا, لیکن آج کی نوجوان نسل پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے, نظریاتی طور پر تو مجھے یہ کہنا چاہیے نظری طور پر کہ ہر آنے والی گزشتہ نسل سے بہتر ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کے پاس علوم کے نئے ذرائع اس کے سامنے ہوتے ہیں اور نیا علم اور نئی دانش کھلتی چلی جاتی ہے, جو یہاں بھی ہے. اس لیے کہ دیکھیے, خود یہ جو موبائل ٹیلیفونز ہیں, یہ سوشل میڈیا کی ایکسس ہے, اس نے ہی بہت سی تبدیلیاں پیدا کی جو بظاہر یعنی ساری دنیا کے در کشادہ ہو گئے ہیں. اور جو ایک تصور تھا کہ گلوبلائزیشن کا, کہ جو دنیا بڑی سطح کا ایک ولیج سا ہو کے رہ گیا ہے, مگر یہ بات میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. ہمارے بڑے فلسفیوں نے ایک بات یہ کہی ہے کہ جو مٹیریل کلچر جو ہے وہ تو دنیا میں ایک ساتھ, یعنی جو تبدیلی آپ کے یہاں ہوتی ہے, فرض کیجیے امریکہ میں جو ایڈوانسمنٹ ہوتا ہے مشینری یا ٹیکنالوجی کا, وہ پیسے والے ملکوں میں اور بھی ہو جاتا ہے, لیکن یعنی ویلیو سسٹم جو ہے یا نان مٹیریل سسٹم جو ہے اس میں تبدیلی اتنی تیزی سے نہیں ہوتی. چنانچہ ایک بود اور فصل قائم ہو جاتی ہے جو مسئلہ پیدا کرتی ہے. چنانچہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ابھی تک کوئی اسیمیلیشن, کوئی سنتھیسس کی طرف نہیں جا پائے ہیں. ان کے لیے کریئر اب سب سے اہم چیز ہو گئی ہے, اور پیسہ کمانا اور زندگی کی آسودگی, آسودگی سب کا حق ہے, اور آسودہ حال رہنا رہنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے, مگر اس کی قیمت بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. کو آپ اس کو چاہیں تو ایک اور شکل دے سکتی ہیں, یعنی جو ہمارے ہاں جسے آپ کہتے ہیں برین ڈرین, سب لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, صاحبان علم یہاں سے جا رہے ہیں, اس کو ایک اس نظر سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں ان کو گزارنے کے بہتر ذرائع میسر ہیں, وسائل میسر ہیں, وہاں کیوں نہ جائیں, یہ ان کا حق ہے کہ وہ بہتر زندگی گزاریں. تو میں اس پر تنقید نہیں کرتا, مگر اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو اچھے دماغ ہیں, اچھے ذہین لوگ جو ہیں, ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ امریکہ میں اور کینیڈا میں اور یورپ میں چلی گئی ہے اور جا رہی ہے, اور جس کو موقع ملتا ہے وہ بظاہر باتیں تو بہت ہم کرتے ہیں, لیکن جیسے ہی موقع میسر ہوتا ہے بہتر زندگی کا, ہم ملک کو چھوڑ چھاڑ کر اس طرف چلے جاتے ہیں. چنانچہ جو رہ جانے والے لوگ ہیں ان کے مسائل اپنے ہیں. 70 برس سے زیادہ کا عرصہ, 75 برس ہو گئے, 3-4 مارشل لا اور آٹوکریٹک ریجیمز رہیں, جمہوریت کا تسلسل برقرار نہیں پاتا, کوئی وزیر اعظم پوری مدت نہیں کر پاتا. ظاہر ہے کہ سیاسی نظام کی ابتری اقتصادی نظام کی ابتری کی ذمہ دار ہوتی ہے, اور معاشرہ اتھل پتھل کا شکار رہتا ہے, کوئی نظام اقدار شکل نہیں اختیار کر پاتا,
تسلسل نہیں آ پاتا.
دوسری طرف یہ ہے کہ جو, جی ہاں, تسلسل نہیں آ پاتا, اور جو مذہب اور دین انسان کو ایک طرح کی عافیت اور ایک طرح کی امان اور پناہ دیتا ہے, مگر مذہب کے نام پر جو نام نہاد مذہب پرست غریبوں کو اور کم علم لوگوں کو اور हमारे देहात में बसने वालों को ही नहीं, शहर में भी पढ़ने वाले रहने वाले लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है। तो वो भी कोई रास्ता, उनकी तरफ से भी कोई रास्ता सामने नहीं आता, कोई शक्ल बनने नहीं पाती कि बिगड़ जाती। मैंने कहीं लिखा है कि शक्ल बनने नहीं पाती कि बिगड़ जाती है, नई मिट्टी को नए चाक से खौफ आता है, शहर गुल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस उसी खाक से खौफ आता है, रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है, बात बनने नहीं पाती कि बिगड़ जाती है, नई मिट्टी को नए चाक से खौफ आता है, कोई शक्ल नहीं बन पाती, कोई सूरत तश्कील नहीं दी जा सकती उस वक्त तक जब तक कोई मुस्तकिल जमहूरी निजाम नहीं चलेगा आगे, जमहूरियत की कदरें नहीं चलेंगी। जमहूरियत से एक सतह पे रवादारी आती है, एक तहम्मुल आता है, एक समझिए एक ऐसी आगही पैदा होती है जिसमें हम मुकालमे की रवायत को आगे बढ़ाते हैं, मुबायसे की रवायत को आगे बढ़ाते हैं, मगर जमहूरी निजाम का तसलसल रहने नहीं दिया जाता और वो खत्म हो जाता है।
अच्छा इफ्तिखार साहब, आपको मुझे नहीं याद होगा आपके तो सैकड़ों हजारों लाखों इंटरव्यूज, मेरा आपसे पहला इंटरव्यू मुझे याद है 1989 में रेडियो पाकिस्तान की वर्ल्ड सर्विस के लिए था। मुझे अपना पहला सवाल भी याद है जो आप ही के एक मिसरे से मैंने शुरू किया था, और वो था कि सारे लश्कर एक तरह के होते हैं, तो मेरा सवाल था तो क्या सारे सरबराह भी एक जैसे होते हैं? उस वक्त पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स में आप पहले सरबराहों से मुख्तलिफ क्या करेंगे, ये मेरा सवाल था। आज भी आप बताइए, अकेडमी ऑफ लेटर्स को आपने देखा मुक्तदरा की सरबराही की, कल आपका तजुर्बा कैसा था और आज इन्हीं इदारों में तब्दीली का सफर आप कैसे देखते हैं?
देखिए मैं पाकिस्तान टेलीविजन में एक अच्छे खासे ओहदे पे फायज था जब मैंने उसको छोड़ा था, और मैं मुल्क से बाहर चला गया और मैंने उर्दू मरकज में काम किया और 13-14 बरस वहाँ काम किया, फिर मैं कोई 10 बरस चेयरमैन रहा अकादमी अदबियात पाकिस्तान का, और फिर मुक्तदरा में वगैरह वगैरह। मगर अब ऐसा मुझे लगता है, ये इसलिए नहीं कि उससे वाबस्ता नहीं हूँ, बहुत से जो लोग हैं, ये जो इदारे होते हैं ये मुलाजमतें नहीं होती, ये नौकरियां नहीं होती, इनको आप जिंदगी यानी इट्स नॉट ए जॉब। ये तो जैसे टेलीविजन या फर्ज कीजिए आप वॉइस ऑफ अमेरिका में काम करती हैं, मुमकिन है कि कोई ऐसा इदारा हो जो आपको इससे ज्यादा तनख्वाह दे सके, मगर ये जो टेलीविजन है रेडियो है, मुझे याद है कि जब मैं रेडियो में काम कर टीवी में काम करता था तो मुझे दो तीन जगह से मुलाजमतों की ऑफर आई, तो असलम अजहर साहब जो मेरे जनरल मैनेजर होते थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि जो टीवी है ये वे ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका है, ये सरकारी नौकरी नहीं है। तो जिन लोगों ने इन इदारों को एक तरह की नौकरी समझ रखा है, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो रेडियो हो, अब मसलन मैं इस शहर में रहता हूँ और मैंने अपनी जिंदगी आगाज की रेडियो से, मुझे ये नहीं मालूम कि इस वक्त रेडियो पाकिस्तान का सरबरा कौन है, मुझको ये नहीं मालूम कि पाकिस्तान टेलीविजन का सरबरा कौन है। यानी आप बताइए कि वो लोग जो सारी जिंदगी अपनी खास शोबे में गुजार देते हैं, इससे बड़ी महरूमी हमारी भी क्या होगी, और उन इदारों के साथ जो सलूक या बदसलूकी हुई है उसका भी क्या कहा जाए। अब जो लोग काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, शायद ज्यादा इल्म वाले लोग भी हैं, वसाइल भी पहले के मुकाबले में ज्यादा हैं, मगर मैं नहीं समझता हूँ कि वो कमा कहू अदब से वैसा शगफ रखते हैं जैसे मसलन पहले के लोग रखते थे और उसको वैसे चला रहे हैं जैसे उनके चलाए जाने का।
एक आखिरी सवाल, होने को तो क्या हुआ नहीं है, अभी कुछ दिन लगेंगे, दयारे नूर में 13 शबों का साथी हो और जान बहुत शर्मिंदा है, चंद मिसरे आपके मखसूस अंदाज के जो आपकी शायरी का खासा भी है आपको एक मुनफरिद मकाम देते हैं, कल और आज के सफर में आपने क्या महसूस किया, तेजी से बदलती हुई सूरत हाल आपके मुनफरिद अंदाज फिक्र पर किस हद तक असर अंदाज हुई, और मजमूई तौर पर यह भी बताइए कि कल और आज की शायरी का एक बुनियादी या चौंका देने वाला फर्क आप क्या देखते हैं?
मैंने जब शेर कहना शुरू किए तो मेरे सामने बड़े बड़े शायर मौजूद थे, राशिद साहब हयात थे, फैज साहब हयात थे, अख्तर अलीमान हयात थे, मोहम्मद मुनीर नियाज़ी और नासिर काज़मी और अजीज हामिद मदनी और सलीम अहमद और यूसुफ फहमीदा और यानी मजीद अमजद हयात थे, मगर मैं उनसे मुलाकात मेरी नहीं हो सकी, लेकिन ये सब शायर मौजूद थे। ऐसे में जब मैंने शेर शुरू किए तो मैंने रुमानवी जैसे नसरों का आपने हवाला दिया शायरी शुरू की, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस दायरे से निकल गया और मैंने महसूस किया बड़ा हक होता है उस जमीन का जो हमारा बोझ उठाए हुए है, अमीर मोमिनीन ने फरमाया था, और मैं इसका कायल हूँ। लोग कहते हैं कि भाई हंगामी, तो भाई जिस लम्हे में जिस हमारी हमारे मुस्तकबिल का फैसला होना होता है, उस वक्त हम अपने जाती गम और जाती इश्क और जाती मोहब्बत को लेके बैठ जाएं, ये कुछ अजीब सा लगता है। चुनांचे मैंने जिस हद तक हो सकता था अपने शहराशोब की तरह की नज़में और गज़लें लिखी, और मैं ये देखता हूँ कि जो मौजूदा जमाने में शायरों का बड़ा कबीला और अक्सरियत ऐसी है कि जो बहुत जल्दी रोमानवी दायरों से निकल कर आलमी सतह की तहरीकों से वाबस्ता अपने आप को समझती है और अपने आवाम से और अपनी जमीन के मसाइल से अपने आप को रोशनास करा के उसकी तर्जुमानी करती है। और ये मैं समझता हूँ मेरे जमाने के नौजवान जो हैं वो हमारी नस्ल में कोई फर्ज कीजिए इकबाल या मीर या गालिब तो नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर जितनी सच्चाइयाँ लिखी गई हैं और जिसकी तर्जुमानी की गई है वो किसी भी दौर से कम नहीं है।
वो तो आपकी शायरी में भी नजर आता है, बहुत मुझे बहुत सारा जिसे कहते हैं कि हिफ्स रही हैं चीजें आपकी इसी शायरी और अदब के हवाले से, तो हम बात फिर करेंगे। इस वक्त आज का ये पहला प्रोग्राम था जो कि तब्दीली के हवाले से था, बहुत मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जहतों पे आपने काम किया और हर जगह पर आपका मुनफरद अंदाज कायम रहा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, हमेशा की तरह सिंपली ग्रेटफुल।
मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, आपने करम फरमाया, याद किया और इस बहाने कुछ बातें हो गई अदब के सिलसिले में, हालात खबर के सिलसिले में, इदारों के बारे में, ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। बहुत मेहरबानी, बहुत करम, बड़ी मेहरबानी,
बहुत शुक्रिया। और अब बहजत चलाने को भी इजाजत दीजिए कल और आज के अगले प्रोग्राम तक। अपना ख्याल रखिएगा।